آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شبانہ بیگم۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے ساتھ ساتھ اروناچل پردیش اور سکم میں بھی اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل اختتام پذیر ہو گیا۔ پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے انتخابی عمل کل سے شروع ہو رہا ہے۔ بی جے ڈی نے 9 لوک سبھا اور اڈیشہ کی 72 اسمبلی نشستوں کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے۔ شیو سینا یو بی ٹی نے بھی مہاراشٹر میں عام انتخابات کے لیے 17 امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ بی جے پی نے لوک سبھا انتخابات اور آندھرا پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کی ایک اور فہرست جاری کی ہے۔ بھارت نے دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کی گرفتاری سے متعلق امریکہ کے بیانات پر سخت احتجاج درج کیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں حیدرآباد میں سن رائزرز حیدرآباد اور ممبئی انڈینز کے درمیان کھیل جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے ساتھ ساتھ دو شمالی مشرقی ریاستوں میں واحد مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج شام پورا ہو گیا۔ بہار میں پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کل آخری دن ہے۔ پہلے مرحلے میں 17 ریاستوں اور 4 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 102 لوک سبھا سیٹوں کے ساتھ ساتھ سکم میں 32 اسمبلی حلقوں اور اروناچل پردیش میں 60 رکنی ایوان کے لیے اگلے مہینے کی 19 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ لوک سبھا کے لیے ایک مرحلے میں ہونے والے انتخابات کے ریاستوں میں تمل ناڈو، اروناچل پردیش، میگھالیہ، میزورم، ناگالینڈ، سکم، لکشدیپ، انڈمان نکوبار جزائر اور پڈوچیری شامل ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل کی جائے گی۔ نام واپس لینے کا آخری دن سنیچر ہے۔ بہار میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال سنیچر کے روز ہوگی اور اگلے مہینے کی 2 تاریخ تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں۔ البتہ بہار میں 19 اپریل کو ووٹنگ ہوگی۔ ملک بھر میں بہت سے سرکردہ امیدواروں نے لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے میں آج آخری دن اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج مہاراشٹر میں ناگپور لوک سبھا حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ تریپورہ میں تریپورہ مغربی لوک سبھا حلقے سے بی جے پی کے امیدوار بپلب کمار دیب اور ان کے کانگریس کے قریب ترین حریف آشیش ساہا نے اگرتلا میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ مدھیہ پردیش میں آخری دن بی جے پی اور کانگریس سمیت تمام بڑی پارٹیوں کے سرکردہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ پیش ایک رپورٹ۔
سرکردہ امیدواروں میں بی جے پی کے امیدوار سوشیل کمار سنگھ اورنگ آباد سے، نوادا سے آر جے ڈی کے امیدوار شرون کمار کشواہا نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ این ڈی اے ہندوستانی عوام مورچہ لیڈر جتن رام مانجھی گیا سے، جبکہ بی جے پی کے امیدوار ویویک ٹھاکر نوادا لوک سبھا سیٹ سے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے۔ لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کے امیدوار ارون بھارتی بھی جموئی حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے۔ گرینڈ الائنس میں پہلے مرحلے کے لیے امیدواروں کا بھی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ آر جے ڈی کے امیدوار کمار سرجیت، ارچنا، روی داس اور ابھے کشواہا، جنہیں آر جے ڈی کے صدر لالو پرساد سے پارٹی کا نشان حاصل ہوا ہے، توقع ہے کہ وہ گیا، جموئی اور اورنگ آباد سے پارلیمنٹ حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے۔ دھرمیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم۔
جموں کشمیر میں ادھمپور لوک سبھا حلقے سے 8 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ اس حلقے میں 19 اپریل کو پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ آسام میں 38 امیدواروں نے اپنے پہلے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ اس مرحلے میں 5 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ ریاست میں 3 مرحلوں میں لوک سبھا انتخابات ہوں گے۔ لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن کل جاری کیا جائے گا۔ 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 88 لوک سبھا نشستوں کے ساتھ ساتھ اس مرحلے میں باہری منی پور لوک سبھا حلقے کے باقی ماندہ حصے میں انتخابات ہوں گے۔ باہری منی پور حلقے کے ایک حصے میں پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کیرلا کی 20 سیٹوں، کرناٹک کی 14 سیٹوں، 13 سیٹیں راجستھان میں، اتر پردیش اور مہاراشٹر میں سے ہر ایک میں 8-8 سیٹوں، مدھیہ پردیش کی 7 سیٹوں، آسام اور بہار میں سے ہر ایک کی 5 سیٹوں، مغربی بنگال اور چھتیس گڑھ میں سے ہر ایک کی 3-3 سیٹوں، منی پور، تریپورہ اور جموں کشمیر میں سے ہر ایک میں 1-1 سیٹ پر اس مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ कागजात नामजदगी 4 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस मरहले के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर के अलावा तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5 अप्रैल को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कागजात की जांच पड़ताल 6 अप्रैल को की जाएगी। बीजू जनता दल बीजेडी ने आज आने वाले लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेडी के सदर और ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने रियासत में 21 लोकसभा सीटों में से 9 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। ओडिशा के वजीर आला गंजम जिले के हिंजिली असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। बीजेडी ने अपने जनरल सेक्रेटरी तंजीम प्रणब प्रकाश दास को संबलपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है, जहां वो मरकजी वजीर और बीजेपी के उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इंतखाब लड़ेंगे। बीजेडी ने ओडिशा में 147 असेंबली सीटों के लिए 72 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ओडिशा में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात आम इंतखाबात के चौथे, पांचवें, छठे और सातवें मरहले में एक साथ होंगे। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात के लिए 17 उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने अपने मौजूदा रुकने पार्लियामेंट अरविंद सावंत को जनूबी मुंबई, राजन बिचारे को थाने विनायक रावत को रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद से ओम प्रकाश नम्बलारकर को और प्रभिनी से संजय जाधव को दोबारा इंतखाब लड़ने का मौका दिया है। अलबत्ता इसके इत्तेहादी शरीक कांग्रेस ने मुंबई के कुछ हलकों और सांगली सीट से उम्मीदवारों के ऐलान पर नाखुशी का इजहार किया है। बीजेपी ने आज लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों की सातवीं फहरिस्त जारी की। आजाद पार्लियामानी रुकन नवनीत राणा महाराष्ट्र में दर्जे फहरिस्त के लिए रिजर्व अमरावती पार्लियामानी हलके से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जबकि बीजेपी लीडर गोविंद करजोल कर्नाटक में चित्रदुर्ग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी करनाल असेंबली सीट पर जिमनी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी रहनुमा वाईएस चौधरी विजयवाड़ा असेंबली हलके से, जबकि पी विष्णु कुमार राजू को शिमाली विशाखापट्टनम सीट से उम्मीदवार खड़ा किया गया है। इंतखाबी कमीशन ने आज बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट दिलीप घोष और कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत को उनके मुबैना काबिल एतराज बयान के लिए वजह बताओ नोटिस जारी किए हैं। जनाब घोष को ये नोटिस मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ उनके बयान के लिए जारी किया गया है। कमीशन ने कहा है कि बयान जारहाना, अहानतामेज और मिसाली जाब्ता अखलाक की गुंजाइशों और कमीशन की एडवाइजरी के खिलाफ वर्जी है। बीजेपी की लोकसभा की उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ मोहतरमा श्रीनेत के बयान के लिए अपने नोटिस में इंतखाबी कमीशन ने कहा कि कांग्रेस के लीडर का बयान नाजेबा, गैर अखलाकी और मिसाली जाब्ता अखलाक की गुंजाइशों की खिलाफ वर्जी है। कमीशन ने दोनों लीडरों से अपना जवाब जुमे तक दाखिल करने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी के अकेले लोकसभा के मेंबर और जालंधर के रुकने पार्लियामेंट सुशील कुमार रिंकू और पार्टी के रुकने कानून साज असेंबली शीतल अंगुरल आज नई दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब रिंकू ने इल्जाम लगाया कि जालंधर के अवाम से उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए जा सके क्योंकि आप पार्टी ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि वो वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के काम करने के अंदाज से बहुत मुतासिर हैं। मरकजी वजीर और बीजेपी के लीडर अनुराग ठाकुर ने कहा कि दफा 370 और 35A को मनसूख करके नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं। जनाब ठाकुर आज जम्मू के खजार कोटली में सहाफियों से बातचीत कर रहे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरबा रक्स की आलमी मकबूलियत में इजाफे पर खुशी का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि गरबा रक्स को कुछ अरसे पहले यूनेस्को की इंटेजिबल सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया था और चंद दिन कबल पेरिस में इसे सर्टिफिकेट ऑफ इंस्क्रिप्शन से भी नवाजा गया था। पेरिस में एक यादगार गरबा शाम का भी इनेकाद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में भारतीय बिरादरी ने शिरकत की। वजीर आजम ने कहा कि गरबा जिंदगी, सकाफत और अकीदत का जश्न है और लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। ये आकाशवाणी है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को फौरी उबूरी राहत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने ईडी को उस उजरदारी पर नोटिस जारी किया जिसे वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दायर किया था, जिसमें उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के जरिए अपनी गिरफ्तारी और मुबैना शराब पॉलिसी घपले मामले से ताल्लुक रखने वाले पैसा ऐंठने के मामले में 6 रोजा रिमांड को चैलेंज किया था। वो इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहवील में है। जस्टिस सुवर्णकांत शर्मा की बेंच ने ईडी को एक नोटिस जारी किया जिसमें उससे केजरीवाल की उजरदारी का जवाब 2 अप्रैल तक देने को कहा गया है। इस मामले की अगली समाअत 3 अप्रैल को होगी। भारत ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से मुतालिक अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान के बयान पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा कि भारत को मुल्क में बास कानूनी कार्रवाईयों के बारे में अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान के बयान पर सख्त एतराज है। उसने कहा कि मुल्कों से तवक्को की जाती है कि वह सिफारतकारी में दूसरे ममालिक के इख्तदार आला का एहतराम करें और उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करें। वजारत ने कहा कि यह जिम्मेदारी हम असर जमहूरियतों के मामले में और ज्यादा हो जाती है और दूसरी सूरत में इसके गैर सेहतमंद नतीजे बरामद होते हैं। वजारत खारजा ने जोर दिया कि मुल्क की कानूनी कार्रवाइयां आजाद अदलिया पर मबनी हैं जो असल मामले और बरवक्त नतीजे के तई अहदबंद हैं। इसी दौरान भारत ने आज नई दिल्ली में अमरीकी सफारतखाने के मिशन के डिप्टी चीफ को केजरीवाल की गिरफ्तारी से मुतालिक अमरीका के जरिए दिए गए बयान के सिलसिले में तलब किया। जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीजन के राजौरी और पुंछ के दोनों सरहदी अजला को कश्मीर डिवीजन में शोपियां जिले से मुंसलिक करने वाली मुतबादल कौमी शाहरा मुगल रोड इस महीने के अख्ताम तक खुल जाएगी। आकाशवाणी जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एमएडी ने मार्च के पहले हफ्ते में बर्फ साफ करने का काम शुरू किया था और यह काम तेजी के साथ जारी है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज कोलालंपुर में मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि वजीर आजम इब्राहिम का रिवायती और नए दौर के शोबों में भारत मलेशिया ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम का विजन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के तई मजीद उमंगों वाले एजेंडे की तश्कील में मददगार साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वह मलेशिया के वजीर आजम की रहनुमाई और इलाकाई तरक्की से मुतालिक उनकी बसीरत अंगेजी से मुस्तफीद हुए हैं। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कोलेबा वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर के दावतनामे पर भारत के 2 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब कोलेबा वजीर खारजा और कौमी सलामती के नायब मुशीर के साथ मीटिंगों समेत दीगर कई मसरूफियात में शामिल होंगे। वजीर खारजा के एक बयान के मुताबिक दोनों वजरा दो तरफा शराकत दारी और बाहमी मफाहमत के इलाकाई और आलमी मामलात पर ताउन के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डाली बहरी जहाज पर सवार भारतीय अमले के चौकस रवैये की तारीफ की है। यह जहाज कल मेरीलैंड के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की पुल के एक सुतून से टकरा गया था, लेकिन अमले के फौरी तौर पर रेडियो पैगाम जारी करने के सबब मजीद नुकसान होने से बचा लिया गया। जनाब बाइडन ने हादसे के दौरान मकामी हुकाम की जानिब से फौरी कार्रवाई की भी सताइश की। और आईपीएल क्रिकेट में इस वक्त हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच जारी है। मुंबई इंडियंस ने आज टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद से बल्लेबाजी करने को कहा। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस की जीत के लिए मुकर्रा 20 ओवर्स में 278 रन का निशाना रखा है। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। कल चेन्नई में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटन्स को 63 रन से हरा दिया था। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल इख्तिताम पजीर हो गया है। पार्लियामानी इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी अमल कल से शुरू हो रहा है। बीजेडी ने 9 लोकसभा और ओडिशा की 72 असेंबली नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। शिवसेना यूबीटी ने भी महाराष्ट्र में आम इंतखाबात के लिए 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात और आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। भारत ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से मुतालिक अमरीका के बयान पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है। और आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेल जारी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस की जीत के लिए मुकर्रर 20 ओवर्स में 278 रन का निशाना रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।